नमस्ते, मैं आराफ हूँ। नाइना ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जॉन हेल्बर्ट की पुस्तक आईपीएड सीनियर्स गाइड उन लोगों के लिए बनाई गई शुरुआती स्तर की उपयोगी मार्गदर्शिका है जिन्हें नया आईपीएड मिला है लेकिन वे तकनीक के साथ सहज नहीं है। इसका उद्देश्य उपकरण की जटिलता को कम करके रोजमर्रा के कामों तक पहुंच बनाना है। पुस्तक का स्वर पारंपरिक तकनीकी मैनुअल की तरह अत्यधिक तकनीकी नहीं बल्कि क्रमवार निर्देशों पर आधारित है। इसमें आरंभिक सेटअप, स्क्रीन पर स्पर्श से होने वाली क्रियाएं, सेटिंग्स ढूंढना, ऐप्स का उपयोग, ईमेल, वीडियो कॉल, तस्वीरें, मनोरंजन और सामान्य समस्या समाधान जैसे विषय शामिल बताए गए हैं। इसका केंद्रीय विचार यह है कि आईपीएड को केवल एक महंगा उपकरण न मानकर संवाद, जानकारी और व्यक्तिगत रुचियों के व्यावहारिक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाए। यह विशेष रूप से उन वरिष्ठ पाठकों के लिए प्रासंगिक है जिन्हें परिवारजन उपकरण तो दे देते हैं पर उसे स्वतंत्र रूप से चलाने का आत्मविश्वास और स्पष्ट प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, आरंभिक सेटअप को डर के बजाय दोहराए जा सकने वाले चरणों में बदलना पुस्तक का पहला उपयोगी आयाम आईपीएड के साथ शुरुआती परिचय को सरल बनाना है। नए उपयोगकर्ता के लिए असली बाधा अक्सर किसी एक फीचर की कमी नहीं होती बल्कि यह अनिश्चितता होती है कि कहां से शुरू करें, किस विकल्प को छुएं और गलती हो जाने पर क्या होगा। क्रमवार पद्धति इस अनिश्चितता को छोटे कामों में बांटती है जैसे उपकरण चालू करना, मूल स्क्रीन पहचानना, आवश्यक सेटिंग्स तक पहुंचना और खाते या इंटरनेट कनेक्शन जैसे प्रारंभिक विकल्पों को समझना। यह दृष्टि वरिष्ठों के लिए इसलिए उपयुक्त है क्योंकि वे शब्दावली याद करने के बजाय हर क्रिया के बाद दिखने वाले परिणाम से सीख सकते हैं। पुस्तक का घोषित जोर जार्गन से बचने पर है इसलिए निर्देशों का मूल्य तकनीकी परिभाषाओं में नहीं बल्कि उपयोगकर्ता को अगला कदम स्पष्ट करने में है। फिर भी पाठक को यह ध्यान रखना चाहिए कि आईपीएड ओएस के संस्करण और उपकरण के मॉडल के अनुसार स्क्रीन, बटन या मेनू बदल सकते हैं। अतः इसे मूल कौशल सीखने का आधार समझना अधिक उचित है न कि हर नए सॉफ्टवेयर बदलाव का अंतिम संदर्भ स्रोत। दूसरा, स्पर्श आधारित इंटरफेस और सेटिंग्स की व्यावहारिक समझ। आईपैड का संचालन कीबोर्ड और माउस वाले कंप्यूटर से अलग है इसलिए स्पर्श आधारित इंटरफेस समझना पुस्तक का महत्वपूर्ण विषय है। टैप करना, स्क्रीन पर आगे पीछे जाना, सूची को ऊपर नीचे खिसकाना और ऐप्स के बीच लौटना जैसी क्रियाएं छोटी लगती है लेकिन इन्हीं पर आगे के सभी काम निर्भर करते हैं। किसी गैर तकनीकी पाठक के लिए एक गलत स्पर्श से अनजान स्क्रीन खुलने का अनुभव असहज हो सकता है इसीलिए सरल भाषा में इंटरफेस का परिचय उपयोगकर्ता को प्रयोग करने योग्य बनाता है। सेटिंग्स का विषय भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कई लोग आवाज, चमक, इंटरनेट, सूचनाओं या अन्य विकल्पों को बदलना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं होता कि नियंत्रण कहाँ है। पुस्तक ऐसे रोजमर्रा के प्रश्नों को केंद्र में रखती प्रतीत होती है। इसका लाभ केवल सुविधा नहीं है। जब पाठक बुनियादी नियंत्रण स्वयं ढूंढना सीखता है तब परिवार के किसी सदस्य पर उसकी निर्भरता घटती है। हालांकि जिन पाठकों को पहले से स्मार्टफोन या टैबलेट का अनुभव है उन्हें यह सामग्री परिचित या सीमित लग सकती है। पुस्तक की ताकत उन्नत शॉर्टकट से अधिक बुनियादी आत्मनिर्भरता में है। तीसरा, ईमेल और वीडियो कॉल के जरिए परिवार से संपर्क बनाए रखना पुस्तक आईपैड को संचार के साधन के रूप में प्रस्तुत करती है। ईमेल भेजना और वीडियो कॉल के माध्यम से परिवारजनों से बात करना इसके व्यावहारिक उद्देश्यों में शामिल है। वरिष्ठ पाठकों के लिए यह केवल ऐप सीखने का मामला नहीं है। डिजिटल संवाद भौगोलिक दूरी के बावजूद बच्चों, पोते पोतियों, मित्रों या देखभाल करने वालों से नियमित संपर्क संभव बनाता है। चरणबद्ध मार्गदर्शन का महत्व यहाँ विशेष रूप से बढ़ता है क्योंकि संपर्क सूची, संदेश लिखना, कैमरा अनुमति या कॉल शुरू करने जैसे छोटे चरण नए उपयोगकर्ता को रोक सकते हैं। पुस्तक का सरल ढांचा इन कामों को एक साथ समझाने के बजाय अलग अलग क्रियाओं में बांटकर सीखने में मदद कर सकता है। साथ ही संचार कौशल का अभ्यास दोहराव मांगता है। एक बार पढ़ लेना पर्याप्त नहीं होता बल्कि पाठक को सुरक्षित वातावरण में परिवार के साथ कॉल और ईमेल का अभ्यास करना चाहिए। पुस्तक का विवरण व्यावहारिक उपयोग पर केंद्रित है इसलिए यह डिजिटल माध्यमों की जटिल सामाजिक या गोपनीयता संबंधी चर्चा का व्यापक ग्रंथ नहीं लगता। पाठक को पासवर्ड साझा न करने, अपरिचित संदेशों से सावधान रहने और निजी जानकारी सोच समझ कर भेजने जैसी बुनियादी सावधानियां अलग से अपनानी चाहिए। फिर भी संवाद को प्राथमिकता देना इस मार्गदर्शिका की वरिष्ठ केंद्रित उपयोगिता को स्पष्ट करता है। चौथा, तस्वीरों, पुस्तकों और मनोरंजन को दैनिक उपयोग से जोड़ना आईपैड का आकर्षण केवल कामकाजी सुविधाओं में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रुचियों तक आसान पहुंच में भी है। पुस्तक के उपलब्ध विवरण में तस्वीरें, फिल्में, संगीत, किताबें और ऐप्स जैसे मनोरंजनात्मक उपयोग शामिल है। यह विषय वरिष्ठ उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपकरण अपनाने की प्रेरणा अक्सर उसी समय टिकती है जब वह व्यक्ति की दिनचर्या या शौक से जुड़ता है। उदाहरण के लिए, तस्वीरें देखना और साझा करना परिवार की यादों से जुड़ने का माध्यम हो सकता है, जबकि डिजिटल किताबें पढ़ना बड़े और समायोज्य अक्षरों के कारण कुछ लोगों के लिए सुविधाजनक हो सकता है। संगीत और वीडियो सामग्री उपयोगकर्ता को खोजने, चलाने और नियंत्रित करने की स्क्रीन संबंधी आदत भी सिखाती है। पुस्तक का लाभ यह है कि वह इन गतिविधियों को किसी तकनीकी उपलब्धि के बजाय सामान्य काम की तरह पेश करती है। इस प्रकार सीखने का लक्ष्य फीचर की सूची याद करना नहीं, बल्कि अपनी रुचि के अनुसार आईपैड का उपयोग करना बनता है। सीमितता यह है कि मनोरंजन सेवाओं की उपलब्धता, सदस्यता शुल्क और ऐप इंटरफेस समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए पुस्तक के मूल निर्देश उपयोगी हो सकते हैं, पर किसी विशेष सेवा की नवीनतम प्रक्रिया को उपकरण पर देखकर सत्यापित करना समझदारी होगी। अंत में, ऐप्स, उत्पादकता और सामान्य समस्याओं में आत्मनिर्भरता, पुस्तक का एक व्यापक पक्ष आईपैड को रोजमर्रा के कामों के लिए उपयोगी बनाना है। ऐप्स के माध्यम से जानकारी, सेवाएं और व्यक्तिगत काम एक ही उपकरण पर उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन नए उपयोगकर्ता के लिए ऐप खोलना, बंद करना, खोज करना या किसी विकल्प को पहचानना भी सीखने योग्य प्रक्रिया है। ऐसी मार्गदर्शिका का उद्देश्य उपयोगकर्ता को हर सुविधा एक साथ सिखाना नहीं, बल्कि यह समझ देना है कि आवश्यक काम के लिए उचित ऐप या सेटिंग कैसे ढूंढी जाए। उत्पादकता का अर्थ यहां पेशेवर कार्यालय कार्य तक सीमित नहीं होना चाहिए। नोट्स रखना, जानकारी देखना, संदेश भेजना, तस्वीरें व्यवस्थित करना या योजनाएं दर्ज करना भी उपयोगी दैनिक कार्य है। सामान्य समस्या समाधान का समावेश इसलिए अहम है कि छोटी अड़चनें अक्सर लोगों को उपकरण छोड़ देने पर मजबूर करती है। इंटरनेट न चलना, कोई ऐप न मिलना, आवाज कम होना या स्क्रीन का व्यवहार बदलना जैसी स्थितियों में शांतिपूर्वक जांच के चरण उपयोगकर्ता का भरोसा बढ़ाते हैं। उपलब्ध समीक्षाओं में कुछ पाठकों ने पुस्तक को स्पष्ट और सहायक माना, जबकि कुछ ने इसे अधूरा या भ्रमित करने वाला बताया। यह अंतर बताता है कि पुस्तक बिल्कुल नए उपयोगकर्ता के लिए अधिक अनुकूल हो सकती है, पर जटिल समस्याओं या उन्नत कार्यों के लिए अतिरिक्त सहायता आवश्यक हो सकती है। निष्कर्ष में, आईपैड सीनियर्स गाइड मुख्यतः उन वरिष्ठ पाठकों के लिए उपयुक्त है जो आईपैड से लगभग अपरिचित है या जो बुनियादी काम करते समय बार बार परिवार की सहायता लेते हैं। यह उन परिवारजनों के लिए भी उपयोगी हो सकती है जो किसी वरिष्ठ सदस्य को उपकरण उपहार में दे रहे हैं और उन्हें एक सरल क्रमवार संदर्भ देना चाहते हैं। इसका व्यावहारिक लाभ तकनीकी शब्दों का भंडार बढ़ाना नहीं, बल्कि आवश्यक कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर पाना है, स्क्रीन को समझना, सेटिंग्स तक पहुंचना, ईमेल और वीडियो कॉल करना, ऐप्स का उपयोग करना तथा मनोरंजन सामग्री तक पहुंचना, ये सभी कौशल उपयोगकर्ता को उपकरण से परिचित बनाते हैं। समान श्रेणी की कई पुस्तकों की तरह यह भी तेजी से बदलते ऐप्स और आईपैड के कारण पूरी तरह स्थायी संदर्भ नहीं हो सकती, इसलिए पाठक को इसे अपने मॉडल और वर्तमान सॉफ्टवेयर के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। फिर भी इसकी अलग पहचान इसका लक्षित दायरा है। यह उन्नत फीचरों की व्यापक सूची देने के बजाय उस शुरुआती झिझक को संबोधित करती है जो गैर तकनीकी उपयोगकर्ता को बुनियादी कदम उठाने से रोकती है। जिन लोगों को पहले से स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर का पर्याप्त अनुभव है, उन्हें अधिक गहराई वाली या मॉडल विशेष मार्गदर्शिका बेहतर लग सकती है, लेकिन बिल्कुल शुरुआती पाठक के लिए स्पष्ट, उपयोग केंद्रित और वरिष्ठ अनुकूल प्रस्तुति इस पुस्तक का वास्तविक मूल्य है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जॉन हार्बर्ट, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।